Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Siddharth Singh.
नमस्कार. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. रोज की तरह हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजारों पर नजर डालेंगे और प्रमुख समाचारों पर चर्चा भी करेंगे. प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे. उदयन, मार्केट बंद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
धन्यवाद.
सबसे पहले जानते हैं बिजनेस हेडलाइंस अर्जुन से.
Benchmark domestic equity indices rise for the second straight session. Sensex surges by 700 points to close at 82,756. Nifty closes at 25,245. Asian markets extend gains amid easing geopolitical concerns and global crude oil prices edge up. Brent crude trading at $67.50 per barrel.
घरेलू शेयर बाजारों के सूचकांक में लगातार दूसरे दिन भी तेजी. सेंसेक्स 700 अंक चढ़ा. निफ्टी 25,250 के आसपास बंद हुआ. वैश्विक चिंताओं के बीच आज प्रमुख एशियाई बाजारों में तेजी जारी रही और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी. ब्रेंट क्रूड $67.50 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. आज बेंचमार्क घरेलू इक्विटी सूचकांक 0.8% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए. सकारात्मक वैश्विक संकेतों और अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक खरीदारी से आज इसमें उत्साह देखा गया. 30 शेयरों पर आधारित बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 700 अंक बढ़कर 82,756 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 200 अंक बढ़कर 25,245 पर बंद हुआ. बीएसई में व्यापक बाजार सूचकांक भी सकारात्मक रहे. मिड कैप सूचकांक 0.6% से अधिक बढ़ा और स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 1.6% की बढ़त हुई.
Benchmark domestic equity indices today ended with gains of more than 0.8%, buoyed by positive global cues and broad-based buying across most sectors. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, surged by 700 points to close at 82,756. The National Stock Exchange, Nifty 50, rose by 200 points to settle at 25,245. The broader market indices at the BSE also closed in positive territory. The mid-cap index advanced over 0.6% and the small-cap index gained almost 1.6%.
सेंसेक्स की 30 में से 27 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज करने वाले शेयरों में टाइटन 3.6%, इंफोसिस और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.1% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई. वहीं भारतीय एयरटेल में लगभग 1.7% का इजाफा हुआ. सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज करने वाले शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 3%, कोटक बैंक में 1.1% से ज्यादा और एक्सिस बैंक में 0.6% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई.
In sectoral indices, the Bombay Stock Exchange, 19 out of the 21 sectors ended with gains. Among the top gainers, tech-focused IT and IT soared almost 1.7% each. Telecommunications gained more than 1.4% and consumer discretionary along with consumer durables added over 1.2% each. The only two laggards were capital goods, which dipped over 0.5%, and oil and gas closed nearly flat. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,821 companies advanced, shares of 1,207 companies declined, while shares of 134 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 51 companies hit their 52-week high, while 23 companies hit their 52-week low.
उदयन जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं. कल मार्केट में काफी उतार चढ़ाव रहा. कुल मिलाकर बहुत मामूली बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ. आज मार्केट में अच्छी बढ़त देखने को मिली और ये सस्टेन रही. आप इसे किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, बाजार ने चैन की सांस ली. वहां पे
जी
जो संघर्ष चल रहा था, तो एक विराम सा है, जो कि कई लोगों का मानना है कि वो कितना कारगर रहेगा, कितना टिकाऊ रहेगा, वो लोगों को अभी भी मालूम नहीं है. पर फर्स्ट रिएक्शन जो था,
जी
जैसे रिलीफ होता है, जान बची लाखों पाए टाइप
जी
की, तो उस टाइप की बात हुई. और ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं, ये सारा जो है सुर्खियों के ऊपर हेडलाइन ड्रिवन है. तो ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में ये चिंताएं थी कि जो फंडामेंटल कुछ बातें होती हैं, जैसे कच्चे तेल के दाम, जो
जी
आपके हर बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, उनमें जब जब देखा गया कि असर नहीं होने वाला, तो एक रिलीफ सी हुई. पर अगर ये कारगर रहती है आगे चल के, ये
जी
अगर कारगर रहती है, मतलब टिकाऊ रहती है, ये इसको युद्ध विराम कहें, जो जो भी कहना चाहते हैं आप, तो फिर आप देखेंगे कि अगर ये, फिर ये जो फैक्टर है, ये अपने साइड में रहेगा, प्ले प्ले में रहेगा. ये कोई भी नहीं मान रहा है कि ये संघर्ष खत्म हो गया, ये चलता रहेगा, ये लोगों का मानना है. पर वो फैक्टर अपनी जगह रहेगा, पर आप पाएंगे कि कुछ चीज़ें और सामने आ जाएंगी,
जी
जैसे कि आपके जुलाई 9 को टैरिफ्स के बारे में, अमेरिका जो टैरिफ्स के बारे में इतनी चर्चा हो रही, जो मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर रही थी, उसके बारे में बातचीत आ जाएगी. फिर हमारे जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं, उनके बारे में वो इन्फ्लुएंस करेंगी. मॉनसून के का जो स्प्रेड है हमारे देश में, वो डिटरमिन करेगा. तो ये कुछ बातें हैं जो रेगुलर बातें हैं,
जी
नियमित रूप से जो इस वक्त ऐसे टाइम पे आती हैं, वो सामने आ जाएंगी. और ये जो है, जो जो जियो पॉलिटिक्स है या जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, उनका प्ले शायद एकदम जो एलिवेटेड था उतना ना रहे. पर सारा कुछ डिपेंड करता है कि ये ये सिर्फ संघर्ष नहीं है.
जी
यहाँ पे कच्चे तेल और नेचुरल गैस का जो सप्लाई है विश्व भर का, वो एक इम्पोर्टेंट एरिया है. अगर वहां पे उसका एक्सेस में प्रॉब्लम आ जाता है, तो नेचुरली आपके स्टॉक मार्केट्स, सबसे पहले कमोडिटी मार्केट्स, फिर
जी
करेंसी मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स फिर रिएक्ट करती
तो
हैं.
ऐसे में आप हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
कुछ ऐसा ना करें जो कि कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं होती है. देखिए, अगर आप समंदर में नाव से जा रहे हैं, मतलब क्रूज में जा रहे हैं, या बोट्स में जा रहे हैं, या आप एक बड़ी नदी को पार कर रहे हैं, तो उसमें वेव्स तो आती रहती हैं, उसके हिसाब से
जी
आप थोड़ी ना अडेप्ट करते हैं. हर रोज आपका, आप सीधे एक बोट में जाते हैं या नाव में जाते हैं या स्टीमर में जाते हैं, और उस हिसाब से चलते हैं. तो अलग करने की कोई जरूरत नहीं. निवेश जो होता है वो एक लंबी अवधि के लिए होता
जी
है. क्यों निवेश इसलिए कर रहे हैं? क्योंकि आप जेब में पैसे हाथ डाल के निकाल के, बटवा निकाल के, उस जो आपकी जरूरत है उसको पूरा नहीं कर सकते. इसलिए आपको संचय करना पड़ रहा है. तो इसलिए आपको कोई स्पेशल चीजें नहीं करनी है. अगर कोई चीज चेंज हो जाती है, तो साल भर देखने के बाद तब चेंज करना होता है. तो निवेश करने से पहले होमवर्क की जरूरत है.
जी
आपको सोचना है, देखना है कि आपको क्या जरूरत है, तब निवेश करना है. और अगर आप सोच समझ के निवेश करते हैं, तो इस टाइप के उतार चढ़ाव में आपको बात-बात पे चेंज नहीं करना पड़ता. जो ट्रेडर होता है, जो
जी
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, उनको इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत है, आपको नहीं.
जी
उदयन, देयर वाज ब्रॉड बेस्ड बाइंग अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, वेदर लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप इंडस्ट्रीज ऑल्सो अगेंस्ट, एंड द डीआईआईज फॉर द नेट बायर्स इन द मार्केट टुडे टू द ट्यून ऑफ 2,000 करोड़ रुपीज. डिफेंस स्टॉक्स आर सीन एज अ ग्रोथ स्टोरी. देयर वाज प्रॉफिट बुकिंग देयर टुडे, बट बैंक एक्स, बैंक निफ्टी एक्चुअली वेंट अप बाय 156 पॉइंट्स. व्हाट इज योर टेक ऑन बैंकिंग एंड डिफेंस व्हिच हैज सीन प्रॉफिट बुकिंग टुडे?
Well, Arjun, the first thing, it's like a high tide. It lifts all boats. So today everybody was excited about everything. So 27, I think you just mentioned 27 out of the total of 30 whatever sectors, they all went up. So it's like a tide that went up. But coming back, interesting points. Yes, defense has suddenly come to the fore. not suddenly, the people's interest has been going up. You would see that even there are mutual funds which are focusing on defense sector. So you have specialized funds. So as we go along, things will keep improving, and you'll find lots of startups also coming who will get listed with various kinds of defense applications. So that's number one. You talked about bank. People are fairly excited, or they see it attractive. The recent RBI announcements, the rate cut and the extra cash that's coming into the system. So that's what has excited people. And then right now, without taking names, there's a IPO going on of a very, I personally find it an interesting story. So NBFCs will also start coming in. Now, there are players, the large guys, they are focusing on large cities. But there'll be players who will be trying to go deep. Tier 3, Tier 4 cities, digital, pure digital play, large digital play. So these new themes will come in, and that's what's going to make things interesting. The other thing, Arjun, which worth saying, that if you're going to grow at a certain rate, the financial sector has to go in step. You know, it's like a tango. You know, if one person in tango, it takes, as I said, it takes two to tango. So if the real economy is going to grow, then the banking and financial services sector will have to move in step. Today, Arjun, the other interesting thing was that IT stocks and Reliance specifically, we cannot...
Auto index also went up today.
Yeah. So basically, people are feeling good. You can use the cliched term risk on. It was there. But sometimes also these things, you know, every time there are days when there'll be six boxes that will get checked and five will not get checked. Today, most of the boxes got checked, and therefore you have this whole wonderful bounce in the market.
So you see value investing going on right now in terms of the company's profitability, whether it's a margin ratio or it's a return ratio, while at the same time there's a mix of growth investing, where they're looking at young companies, and the primary market, where the IPOs are picking up in terms of their valuation.
Arjun, I suspect the way the economy is going to pan out, I mean the global economy, let's not even distinguish, that whole period, the COVID, post-COVID period, where growth, you know, you pay a large amount, premium amount today, and you know that markets are going to go up, at some point you break even. That probably, that truth, shall we say, within quotes, is not working today. So you nobody is saying that there's going to be runaway growth. There's going to be growth, but you have to find the right stories. So when it comes to stocks, one has to find the right stories and then get it, be part of those stories. So coming back, I would say that today it's a much better place as far as value investing is concerned. Growth stories, growth investing is still there.
बिल्कुल, और इसके बाद बढ़ते हैं और नजर डालते हैं रुपए के ऊपर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे कमजोर होकर 86.09 रुपए पर बंद हुआ. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 98.10 पर कारोबार कर रहा था. तो फिलहाल उदयन, अगर हम देखें तो रुपए में ये जो कमजोरी दर्ज की गई है, कैसे देखते हैं?
देखिए, इसके इसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है. देखिए, वो एक बैलेंस आउट हुआ है जो निवेश के लिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो मार्केट शेयर बाजार में उसके वो एंट्री हुई है, पर इंपोर्टर्स का भी डिमांड रहा है. तो ये एक एपिसोडिक इंटरप्ले था, इसमें बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है.
जी, और कल
जस्ट लुक एट द यूएस डॉलर इंडेक्स, इट्स 98.10. द U.S. currency has been weakening since the Trump administration has announced its tariff policy. Now there are geopolitical concerns as well. How do you see the U.S. dollar right now as the international reserve currency vis-a-vis gold, where the valuation of gold per troy ounce is at $3,400 U.S. dollars?
Let me take the last bit first. The gold is going to remain very interesting. I mean, it's something that if you have 100 rupees of investments, I would personally say that at least 10 rupees should be in gold in some form. You don't have to go and go to the jeweler and buy. That's the worst form of gold investment. You should buy, if you have to buy, maybe biscuits or whatever, bars or whatever. But coming back, you can even invest in balanced advantage funds or multi-asset allocation funds. Those are very interesting. You have a mix of debt, equity, gold. So you can do that. So coming back, this is something that will continue. Why? Because whenever you start feeling uncomfortable about the financial system, global tensions, etc., etc., then you typically go to gold. You seek refuge, and it's been doing well. But the point is, it'll never do as well as equity. So coming back, that is the bit. Now, I think I've missed out your first part of your question, which was...
As an international reserve currency.
Yeah, so gold, rather dollar, will continue to dominate. There is no... competitor on the horizon. But what has happened, Arjun, is yes, tariffs is an issue, but what has happened is markets have woken up to the fact that US government is taking on more and more debt. So if you're taking more and more debt, your currency's value to me, I mean, somebody who wants to buy dollar as an investment, becomes less and less. More the supply you have, the value goes down. So I'm sure there will be people who will hear this and will get outraged that there are 10 other things. But I mean, to a lay person, a listener of this program, it's a simple, if you look at it in a supply demand perspective, this is how one can address this.
और इस बीच वैश्विक उतार चढ़ाव की चिंताओं में कमी के बीच आज प्रमुख एशियाई बाजारों में तेजी जारी रही. हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 1.2% से अधिक दर्ज किया गया. चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1% बढ़ा. सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक 0.5% से अधिक बढ़ा. जापान का निक्केई 225 सूचकांक यानी 0.4% बढ़ा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 0.15% बढ़ा. यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में भी दिन के कारोबार में गिरावट देखी गई. अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 0.4% से अधिक और फ्रांस के कैक में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. वहीं लंदन का फुटसी 100 बिना किसी बदलाव के कारोबार कर रहा था. तो एशियन मार्केट की अगर हम बात करें उदयन, तो किस तरह से आप देख रहे हैं इसे, जिस तरह का जो सेंसेस दिखा रहा है यहाँ पर?
देखिए, यहाँ पे क्या एग्जैक्ट फैक्टर्स हैं प्ले में आई वो तो मैं कह नहीं पा रहा हूँ, पर जो ये कच्चे तेल के जो सप्लाई का इशू था, जो चीन एक बहुत बड़ा यूजर है, हमसे भी बड़ा यूजर है, तो अगर वो सप्लाई रुक जाता, उसमें डिस्ट्रप्शन आती, तो चीन में एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ का. वो सिर्फ ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे एक साइकिल के हिसाब से जा रहा है, उसके स्ट्रक्चर बुनियादी कुछ बातें हैं जो चीन को, जो एक 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 एवरेज बन गया था ग्रोथ, वो अचीव करने से रोक रहा है. तो जितनी सारी इकोनॉमीज हैं, वो तो अलग बात है, पर चीन से जुड़ी हुई जितनी इकोनॉमीज हैं वो चीन के ऊपर डिपेंडेंट है. आपके कोरिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए, सारी जो ईस्ट एशिया में वो चीन से जुड़ी हुई है, और इस चीन से ऑफ कोर्स अमेरिका भी जुड़ा हुआ है. तो ये जब आपके एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट के बारे में चिंता से आप दूर हो जाते हैं, तो तब वो हेल्प जरूर होता है. हो सकता है यहाँ पे दूसरी कुछ बातें हों, और यूरोपीय बाजार में भी हो सकता है कि कुछ और चिंताएं आ गई हों सामने, जो जो कि मैं मेरे को अभी मेरे सामने नहीं है.
द रशिया यूक्रेन वॉर, डू यू फील दैट दीज जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आर ऑल्सो प्लेइंग ऑन यूरोपियन मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट?
Oh yes, absolutely, Arjun. It's worth pointing out pre this conflict, Ukraine conflict, the whole of Europe was living on Russian gas. So suddenly you have to change your whole supply overnight. You don't even have स्टोरेज फैसिलिटीज, यू आर नॉट यूज टू गेटिंग इट ऑन शिप्स. सो इट्स अ होल पैराडाइम दैट हैड टू बी चेंज. देन ऑफ कोर्स अमेरिका एंड अदर्स इन यूरोप डिसाइडेड दैट चीन वॉज एक्चुअली रादर चाइना वॉज एक्चुअली एन एडवर्सरी. सो कंट्रीज लाइक जर्मनी हु आर सो इंटरलिंक्ड with China, they also have to figure out where are we going to produce, where are we going to sell. So the whole supply chain and destination markets, then, you know, how do you transport? Because, you know, there are shipping areas which are coming under disruption. So all this has been taking a some kind of a, shall we say, a toll. And then security, when security considerations come in, you have to increase commitment to defense. So all that rejigging is happening, and it's not getting spaced out over time. It's happening all together. So that probably has been at play in various economies in Europe. And from time to time, they get reflected in the stock markets.
Well, let's now have a look at the U.S. stock market. U.S. stocks surged more than 1% on Tuesday, extending their rising streak for a second straight session. Market sentiment was lifted by truce between Israel and Iran, with investors optimistic that the ceasefire will hold and ease geopolitical concerns. The Nasdaq Composite Index zoomed over 1.4%, the Dow Jones Industrial Average climbed almost 1.2%, and the S&P 500 rose 1.1%. Earlier, Federal Reserve Chair Jerome Powell, speaking before the House of Representatives Financial Services Committee, reiterated his view that rate cuts could wait until the economic effects of tariff increases were better known.
Our obligation is to keep longer-term inflation expectations well anchored and to prevent a one-time increase in the price level from becoming an ongoing inflation problem. As we act to meet that obligation, we will balance our maximum employment and price stability mandates, keeping in mind that without price stability, we cannot achieve the long periods of strong labor market conditions that benefit all Americans. For the time being, we are well positioned to wait to learn more about the likely course of the economy before considering any adjustments to our policy stance.
Well, we just heard the Fed Reserve Chair Jerome Powell. He mentioned about the labor market, which has been actually quite stable in terms of the number of jobs produced on a monthly or a quarterly basis in the United States. But inflation is being seen as sticky, and discount rate, which is a U.S. repo rate, is at 4.5%. It's between 4.25 and 4.5%, despite pressure from the president's office to cut rates. The Fed chair has maintained it at 4.5%. What's your take on this?
Well, Arjun, in this testimony, whose bite was just plain, Jerome Powell said something very interesting. One of the lawmakers actually asked him that, what would, right now you have said this, but under what circumstances could things change? Now, one of the things he said that if we see things happening in the labor market, which is jobs not getting created or people losing jobs, that's when the rate cut can happen a little quicker. Of course, he's entitled. He wants to wait for the effect of the tariffs. And Arjun, in this testimony again, he actually mentioned how an effect of tariff doesn't happen immediately. So he mentioned how it takes a couple of months to see its effect. So he's saying that he will be seeing the effect somewhere around August, September, November. So this is how the play is going to happen. And I think he's going to be taking his rate related decisions accordingly. The market, Arjun, it's worth pointing out, is already placing in like two rate cuts or 25 basis points, some experts are placing in. And people think that that's the trajectory. It's not going to happen immediately, but somewhere around September onwards, maybe two rate cuts during the year.
और अब बात करते हैं कैबिनेट ब्रीफिंग की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र यानी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर साउथ एशिया रीजनल सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. ये खाद्य और पोषण सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा. इससे आलू और शकरकंद की पैदावार कटाई के बाद के प्रबंधन और मूल्यवर्धन में सुधार करके रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।
आगरा उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा आलू का उत्पादक है और उत्तर प्रदेश में जो आगरा के आसपास वाला क्षेत्र है वो बड़ा आलू का बेल्ट है। उस बेल्ट में आगरा में जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसका रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा 111 करोड़ रुपए की लागत से। राज्य सरकार ने बहुत ही निर्णायक तरीके से काम करके जमीन दे दी है ऑलरेडी और अब वहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से ये सेंटर बनेगा। इस सेंटर के बनने से देश में जो अगर हम कहें हमारे फूड ग्रेन्स दोनों राइस और व्हीट उसके बाद में जो थर्ड मोस्ट कंज्यूम्ड कल्चरल प्रोडक्ट है वो पोटैटो है तो ये इस सेंटर से एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा जाएगा इसीलिए निर्णय लिया गया है।
इन मोर न्यूज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्टेटेड दैट द इंडियन इकोनॉमी रिमेन्स रेजिलिएंट डिस्पाइट ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। इन एन आर्टिकल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इन द जून बुलेटिन इश्यूड टुडे द आरबीआई हैज सेड दैट द ग्लोबल इकोनॉमी इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स reeling from the twin shocks of trade policy uncertainties and a spike in geopolitical tensions. The RBI has added that in this state of elevated global uncertainty, various high-frequency indicators for May 2025 point towards resilient economic activity in India across the industrial and services sector. Very briefly, how do you see the RBI's outlook right now vis-a-vis the discount rate? We have already cut 50 basis points. It's 5.5%, the repo rate. How do you see the indication by the RBI very briefly?
Well, Arjun, I think RBI is going to wait, will like to see the transmission of these rate cuts. It typically takes time and both banks will try and adjust the loan rates. I mean, you would want the loan rates to happen first and then deposit rates also will get adjusted.
In more news, RBI today announced that it will extend the trading hours for the call money market, market repo and tri-party repo, TREP, starting from the 1st of July. According to an official statement, the trading hours for the call money market will be extended by 2 hours. Currently, the market closes at 5 p.m. but from July the 1st, it will remain open till 7 p.m. The Reserve Bank of India is going to conduct a 7-day variable rate reverse repo VRR auction on Friday. The VRRR is an operation that temporarily drains liquidity from the banking system. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has stressed on the need for self-reliance and export competitiveness in key sectors to boost the country's export. He said the country must focus on the sectors in which India has a competitive edge over other countries. Let's now move on to the crude oil market. Crude oil prices recovered some of its lost ground today after sliding earlier this week as investors assess the stability of a ceasefire between Iran and Israel. Brent crude was trading over 0.5% up at $67.50 per barrel, while WTI crude was also trading over 0.5% up at $64.73 per barrel when reports last came in. This is very tricky, the crude oil market, especially with the geopolitical tensions. Do you see the ceasefire continuing and the attacks actually coming down and being non-existent for a period that will stabilize the oil market prices and shipping through the Strait of Hormuz is not disrupted by Iran?
Arjun, I wish anybody in this world knew about the ceasefire. So I don't think nobody has got a clue about it. But we hope that it'll stick because everybody is going to get affected. If that doesn't get, it sticks, then, you know, you can expect oil prices to move in this kind of range.
Let's have a look at the precious metals market. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.3% up at 97,560 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was trading marginally up by 0.1% at 1,05,500 rupees per kilogram a short while ago.
सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.34% बढ़कर 97,560 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.10% बढ़कर 1,05,500 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। और श्रोताओं, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा। उद्यान कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices rise for a second straight session. Sensex surges by 700 points. Nifty closes around 25,250. Asian markets extend gains amid easing geopolitical concerns. And global crude oil prices edge up. Brent crude trading at $67.50 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
Namaskar. Market Mantra.